हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांश जैसे ही अपने कमरे से बाहर आया, उसके मन में बहुत सी बातें चल रही थीं। उसने अपने आप से कहा, ये क्या कर रहा हूँ मैं ये सब, क्यों उसे जाने नहीं दे रहा? मुझे पता है वो लड़की मेरी पहुँच से दूर कहीं भी नहीं भाग सकती, चाहे जहाँ भी चली जाए मैं उसे वापस ला सकता हूँ, और अगर उसने सच में मिशिका की जान लेने की कोशिश की है तो वो मुझे बच नहीं पाएगी। तो फिर क्यों मैं उसे अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता, क्यों कर रहा हूँ मैं? बहुत ही परेशान अपने आप से ये सारे सवाल करता हुआ वेदांश सीढ़ियां उतर ही रहा था कि उसने देखा वहां बंगले के हॉल एरिया में काफी सारे लोग जमा थे। सब वेदांश की तरफ ही देख रहे थे। वेदांश को बिल्कुल भी आदत नहीं है कि वो इस तरह किसी की नज़रें खुद पर महसूस करेगा फिर लोगों का जवाब दे, इसीलिए उसे बहुत अजीब लगा और वो भीड़ में से निकल कर आगे जाने लगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, वेदांश बेटा रुको। वेदांश बस इसी आवाज़ को इग्नोर करके वहां से बाहर निकल जाना चाहता था, लेकिन जब किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा तो उसे रुकना पड़ा। लेकिन बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड चेहरे के साथ वेदांश ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, क्या है मामा जी? वेदांश के मामा जी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा वो लड़की कौन है जिसे तुमने कमरे में बंद करके रखा है, और ताला क्यों लगाकर जाते हो अपने कमरे में? वो भी एक इंसान है। अपने मामा जी की ये बात सुनते ही वेदांश ने गुस्से से भरी नज़र उनकी तरफ देखी और कहा, आप कोई नहीं होते मुझसे ये सवाल करने वाले, और वैसे भी कोई शादीवादी तो होनी नहीं, अब मिशिका हॉस्पिटल में है, कोमा में, तो आप लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, शायद मैं आप लोगों की रिटर्न टिकट करवाना भूल गया हूँ। ना, कोई बात नहीं, मैं अभी बुक करवा देता हूँ। इतना बोलते हुए उन लोगों के सामने ही वेदांश ने अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर अपने असिस्टेंट धीरज को फ़ोन किया और उसे अपने सारे रिश्तेदारों के लिए फ़्लाइट और ट्रेन टिकट बुक करने के लिए बोल दिया। उसने जानबूझकर उन सारे लोगों के सामने ही ये बात बोली, क्योंकि वेदांश नहीं चाहता था कि अब कोई भी रिश्तेदार ज़्यादा दिनों तक उनके घर में रहें या फिर उससे कोई भी सवाल करें, क्योंकि वेदांश को सवाल सुनने और जवाब देने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। वो किसी को किसी भी बात का जवाब नहीं देता, वो जो भी करता है सब कुछ अपनी मनमर्जी से करता था। वेदांश के ऐसे बोलने पर वहाँ पर खड़े ज्यादातर रिश्तेदारों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, और तभी वेदांश के मामा जी ने कहा, नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी आज निकलने ही वाले थे, लेकिन तुम बस इतना याद रखना, अगर तुम किसी के साथ गलत करते हो ना तो तुम्हारे साथ भी ज़रूर गलत होगा, और उससे कहीं ज़्यादा। अपने मामा जी की बात सुनकर वेदांश बोला, आपको शायद पता नहीं है मामा जी, लेकिन वो जो गलत सबके साथ होता है ना, वो गलत ही मैं हूँ, तो भला मेरे साथ क्या गलत होगा? वेदांश की ये बात सुनकर उसके मामा जी साइड में खड़ी हुई अपनी पत्नी से बोले, चलो सारा सामान पैक करो, मैं जब तक दीदी से मिलकर आता हूँ हॉस्पिटल से वापस, फिर हम यहाँ से वापस चलेंगे। उनकी बात सुनकर वेदांश ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वहाँ से बाहर निकल गया। बाकी सारे मेहमान भी अपने अपने कमरों में चले गए। वेदांश वहाँ से सीधा अपने फार्म हाउस आया, जो कि वहाँ शहर से काफी दूर था, रिहायशी इलाके से भी काफी दूर। फार्म के चारों तरफ काफी बड़े बड़े बागान और गार्डन थे, काफी सारे पेड़ पौधे भी थे, और उसके पीछे काफी बड़ा घना जंगल नजर आ रहा था। वेदांश वहाँ पर आया तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी कार देखते ही दरवाज़ा खोल दिया, और काफी सारे लोग वहाँ पर थे जो वेदांश के लिए काम करते थे। फार्म हाउस के एकदम गेट के सामने उसकी कार रुकी। वेदांश अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकला और सीधा चलता हुआ वो फार्म हाउस के अंदर आ गया। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो एक साइट पर आया, जहाँ पर ज़मीन से उसने कारपेट हटाई और उसके नीचे बना हुआ एक दरवाजे जैसा हिस्सा खोला, और फिर नीचे जाने वाली सीढ़ियों से फार्म हाउस के बेसमेंट में आ गया। वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था, सिर्फ एकदम बीच में एक बल्ब जल रहा था, और वहाँ पर कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था। उसके हाथ कुर्सी में पीछे करके बंधे हुए थे और वो शायद बेहोश था, क्योंकि बिल्कुल भी हिलटुल नहीं रहा था, और उसके चारों तरफ कोने में चार आदमी खड़े हुए थे। वेदांश जैसे ही सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया, उनमें से एक आदमी भागते हुए उसके पास आया और बोला, सर आप यहाँ? वेदांश ने अपने सामने खड़े आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, हाँ, इस लड़के को सही सलामत इसके घर पहुंचा दो। वेदांश की बात सुनकर उस आदमी को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने जैसे कन्फर्म करने के लिए दोबारा से पूछा, क्या सर? वेदांश एकदम सीरियस भरी आवाज में बोला, सुनाई नहीं दिया या फिर सुना नहीं चाहते हो? मेरे पास दोबारा बोलने का फालतू टाइम नहीं है, जैसा मैंने कहा वैसा करो, नहीं तो तुम्हें रिप्लेस करने वाले भी बहुत हैं। इतना बोलते हुए वेदांश अपनी जगह से चलते हुए आगे आया और आगे आकर उसने कुर्सी पर बैठे हुए उस लड़के के मुंह से वो काला कपड़ा हटा दिया और सामने अक्षय का चेहरा नजर आया, क्योंकि वो अक्षय ही था जिसे वेदांश ने इतने दिनों से किडनैप करके रखा हुआ था। उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी और वो इस वक्त बेहोश था। उसके हाथ पैर पर बंधी हुई रस्सियों से निशान पड़ चुके थे, चेहरे पर भी कुछ काले पड़े हुए निशान थे, लेकिन वेदांश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने उसके चेहरे से हटाया हुआ कपड़ा वहीं साइड में फेंका और सीढ़ियों से वो उसे बेसमेंट से बाहर आ गया। वो अभी अपने फार्म हाउस से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ और अपने असिस्टेंट धीरज का नंबर देखकर वेदांश ने तुरंत ही फोन कॉल रिसीव कर ली और बोला, हाँ धीरज, क्या हुआ बताओ? दूसरी तरफ से धीरज की बहुत ही घबराई हुई आवाज आई, सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो मिस्टर तुषार ने अपने सारे शेयर कंपनी से वापस ले लिए हैं, वो हमारे साथ कोई बिजनेस रिलेशन रखना नहीं चाहता, इसके अलावा वो मार्केट में हमारी कंपनी का नाम भी खराब कर रहे हैं, ये बोलकर कि आप अपनी जुबान के पक्के नहीं हैं, और भी बहुत कुछ अफवाहें उन्होंने हमारे खिलाफ फैलाई हैं। वेदांश ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, क्या उस तुषार की इतनी हिम्मत? तुम अभी के अभी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाओ और हो सके तो पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो, मुझे मीडिया के सामने कुछ बोलना है, उस तुषार को तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, बहुत ही गलत पंगा लिया है उसने। इतना बोलते हुए वेदांश तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गया, क्योंकि इस बीच मिशिका की शादी और उसके बाद मिशिका के अस्पताल में होने की वजह से वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाया था और पिछले 2-3 दिनों से उसने बिजनेस न्यूज पर भी ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए उसे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चल पाया था, नहीं तो वो सब चीजों पर अपनी पैनी नजर रखता था। वहीं दूसरी तरफ मिशिका की माँ अभी भी अस्पताल में थी और वो बस एक बार ही घर आई थी, इसीलिए जाने से पहले सारे रिश्तेदार, खासकर उनके मायके तरफ के लोग, उनके भाई बहन उनसे मिलने के लिए आए, और मिशिका के लिए उन लोगों को बुरा भी लग रहा था कि वेदांश की वजह से वो ऐसी हालत में पहुंच गई थी, लेकिन फिलहाल वेदांश के खिलाफ ना तो कोई कुछ कर सकता था और ना ही उसे कोई कुछ बोल सकता था, इसीलिए जाने से पहले उनके भाई बहन बस उनसे मिलने आए थे और मिशिका की माँ ने भी अस्पताल से ही उन सबको विदा कर दिया और उन्हीं लोगों से उन्हें इस बारे में भी पता चल गया कि वेदांश ने अंबिका को घर में कैद करके रखा हुआ था। टू बी कंटिन्यूड।
क्या वेदांश की माँ कुछ करेंगी अंबिका को उसकी कैद से छुड़ाने के लिए? क्या वो घर जाएंगी? और तुषार क्यों जा रहा है वेदांश के खिलाफ? क्या वो शादी में हुई बेइज्जती का बदला ले रहा है? क्या उसे अब तक पता नहीं चला है मिशिका के सुसाइड का सच? क्या लगता है आप लोगों को? आगे पता चलेगा।